नमस्कार, आज हम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा के एक बेहद महत्वपूर्ण उद्बोधन देवत्व के जागरण का आधार यज्ञ पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे।
जी, ये उद्बोधन नागपुर अश्वमेध यज्ञ के समय दिया गया था।
हाँ, और इसका मकसद है यज्ञ के असल मायने को समझना।
बिल्कुल।
कि ये सिर्फ एक मतलब रस्म नहीं है।
बिल्कुल नहीं।
तो अक्सर हम सोचते हैं यज्ञ मतलब हवन कुंड, आहूति, बस। लेकिन वंदनीय माता जी इसे कहाँ ले जाती हैं? उनके लिए तो ये एक सच्चाई है, एक सिद्धांत।
हाँ, जीने का तरीका,
पूरा चरित्र व्यवहार ही यज्ञ है।
सही कहा।
जहाँ लोग अच्छे चिंतन अच्छे व्यवहार के साथ इकट्ठे हों, वही यज्ञ है। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है।
बिल्कुल, ये परिभाषा ही अपने आप में क्रांतिकारी है। और इसी नजरिए से अगर देखें तो अश्वमेध यज्ञ का मतलब भी बदल जाता है।
हाँ, अश्वमेध, इसका क्या अर्थ बताया?
अश्व यानी हमारी वो अनियंत्रित पार्श्विक इच्छाएं, हमारी बेलगाम आदतें।
अच्छा।
उन्हें शुभ कार्यों में मतलब यज्ञ में समर्पित कर देना। इसका असली मकसद व्यक्ति और समाज में एक नई जान फूंकना है, लोक कल्याण करना है।
लोक कल्याण।
हाँ, जैसे संत कबीर का वो उदाहरण है ना, थोड़ी सी हींग और घी को गुल जलाकर उसकी सुगंध से, उसकी प्राण वायु से सबको सुकून पहुंचाया। बस वही है यज्ञ की भावना, सबकी भलाई, सबकी तृप्ति।
और इसी सोच को मुझे लगता है गुरुदेव ने आगे बढ़ाया, महायज्ञों की परंपरा को फिर से जीवित किया।
बिल्कुल, और साथ ही ब्राह्मणत्व की परिभाषा भी बदली।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है
कि ब्राह्मण जन्म से नहीं कर्म से होगा, वो जो समाज सेवा के लिए आगे आए।
मतलब ये कोई जाति या वर्ग नहीं।
नहीं नहीं, ये एक सोच है, एक चेतना है।
बहुत बड़ा बदलाव है ये वाकई।
हाँ, और वंदनीय माता जी का मानना था कि राष्ट्र निर्माण में धर्म की भूमिका बहुत अहम है।
पर कैसा धर्म?
कायरों वाला नहीं, बल्कि वो जो कर्मों की सुगंधी फैलाए, जैसे राम, बाहु, पृथु जैसे राजाओं ने अपने यज्ञों से किया। उनका मानना था कि देखो, शासन तंत्र मतलब सरकार, वो डंडे से अनुशासन तो शायद ला सकती है।
हाँ, लागू कर सकती है,
पर जो दिल की भावना है, जो सच्ची प्रेरणा है, वो तो धर्म तंत्र से ही जागेगी।
अच्छा।
और बदलाव के लिए अनुशासन से कहीं ज्यादा ताकतवर है भावना।
तो ये भावना जगाने के लिए, धर्म तंत्र को जमीन पर उतारने के लिए लोग भी चाहिए। यहीं शायद शांति कुंज की बात आती है।
Exactly.
जिसे कार्यकर्ताओं की टकसाल कहा गया है।
बिल्कुल सही पकड़ा। शांति कुंज वही जगह बनी जहां ऐसे कार्यकर्ता तैयार हों जो इस भावना को जी सकें, फैला सकें।
और गायत्री मंत्र का क्या जिक्र है? वो तो पहले बहुत सीमित था शायद।
हाँ, पहले बहुत सीमित था, लेकिन गुरुदेव और माताजी के प्रयासों से आज करोड़ों लोगों तक पहुंचा है।
ये तो कमाल है।
ये दिखाता है कि विचार और भावना का जुड़ाव कितना गहरा और शक्तिशाली हो सकता है। संदेश साफ है, हम सब एक ही माँ, गायत्री माँ की संतान है। इस एकता को बनाए रखना है।
एकता और भावना की शक्ति, विश्वामित्र का उदाहरण भी तो यही दिखाता है ना?
बिल्कुल, विश्वामित्र को भी तो गायत्री मंत्र के बल पर ही वो स्थान मिला जो वशिष्ठ ऋषि का था।
हाँ, उन्हें समझ आया कि असली शक्ति बाहरी नहीं,
क्षत्रिय बल में नहीं, ब्रह्म तेज में है। वो अंदर की आत्मिक शक्ति जो सच्ची भावना और तप से आती है। दिग्बलम क्षत्रिय बलम, ब्रह्म तेजो बलम बलम। माताजी इसी अंदरूनी शक्ति, इसी देवत्व के जागरण को यज्ञ का असली फल मानती थी।
और ये सिर्फ आध्यात्मिक बातें नहीं है, जहाँ तक मुझे याद है माताजी ने यज्ञ के कुछ व्यवहारिक लाभ भी बताए थे।
हाँ बिल्कुल, आज की समस्याओं के हल के तौर पर भी।
जैसे?
जैसे कारखानों के धुएं से होने वाला प्रदूषण, या फिर हमारे मन का प्रदूषण,
मानसिक प्रदूषण। हाँ,
इन सब को भी यज्ञीय जीवन शैली से मतलब सामूहिक अच्छे कर्मों से कम किया जा सकता है। वातावरण सुधरता है, स्वास्थ्य बेहतर होता है।
उन्होंने दिल्ली में टीबी का उदाहरण भी दिया था शायद।
हाँ दिया था, ये दिखाने के लिए कि ये बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं।
लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ कर्मकांड करने से ये सब लाभ मिल जाते हैं?
नहीं, यही तो खास बात है। माताजी ने इस पर बहुत जोर दिया, कर्मकांड से ज्यादा महत्वपूर्ण है यज्ञ करने वाले का चरित्र।
अच्छा।
जैसे राजा दशरथ का पुत्रष्टि यज्ञ, वो उनके कुलगुरु वशिष्ठ ने नहीं किया था।
ओ, किसने किया था फिर?
वो श्रृंगी ऋषि ने संपन्न कराया। क्यों? क्योंकि उनमें वो चारित्रिक बल, वो तप की शक्ति थी। व्यक्तित्व की श्रेष्ठता, चरित्र की निष्ठा ही यज्ञ को सफल बनाती है।
ये सुनने में तो बहुत ऊंचा आदर्श लगता है, पर आम इंसान इस ऊंचे चरित्र तक पहुंचे कैसे? क्या इसका कोई व्यवहारिक रास्ता बताया माताजी ने?
हाँ बताया, दो मुख्य रास्ते सुझाए, सेवा और नारी जागरण।
नारी जागरण, विस्तार से बताइए।
उन्होंने पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों को हटाने पर जोर दिया, स्त्रियों को पुरुषों की तरह समाज के हर काम में आगे आने के लिए प्रेरित किया।
कोई उदाहरण दिए?
हाँ, माया वर्मा विजोली की रानी जैसे उदाहरण दिए जिन्होंने आगे बढ़कर नेतृत्व किया। माताजी का मानना था कि समाज की धुरी तो नारी है, उसका जागरण बहुत जरूरी है, ये चरित्र निर्माण का एक प्रैक्टिकल कदम है।
और दूसरा रास्ता सेवा?
हाँ, सेवा। समाज बदलने का आधार उन्होंने सेवा को माना, राजनीति को नहीं।
राजनीति को नहीं,
नहीं। कार्यकर्ताओं से साफ कहा, मिशन का काम करो, एकजुट रहो, एक बनेंगे नेक बनेंगे का नारा भी दिया और कहा कि पद लिप्सा वाली राजनीति से दूर रहो।
अच्छा,
उन्होंने वो टिटहरी के अंडों वाला किस्सा भी सुनाया था ना?
हाँ, सुना है।
कैसे अपने आत्मविश्वास और सिद्धांत पर टिके रहने से समुद्र को भी पीछे हटना पड़ा था, अगस्त्य ऋषि की तरह। आत्मविश्वास और सिद्धांत की शक्ति।
तो सार ये है कि वंदनीय माताजी के लिए यज्ञ सिर्फ पूजा पाठ या हवन नहीं?
बिल्कुल नहीं, ये एक पूरा जीवन दर्शन है, जीने का एक तरीका।
व्यक्तिगत स्तर पर अपने अंदर देवत्व जगाना
और सामूहिक स्तर पर एक चरित्रवान, सेवाभावी, एकजुट समाज बनाना, यही है यज्ञ का आधार।
ये सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है।
सही कहा, एक उन्नत पद्धति।
और जाते जाते ये सवाल शायद हम सबके मन में छोड़ जाना चाहिए, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ इतना प्रदूषण है, बिखराव है, चरित्र का संकट दिखता है, वहाँ यज्ञ के इस गहरे अर्थ को, मतलब निस्वार्थ सेवा, अंदर की शुद्धि और सबके भले की सोच, इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने समाज में कैसे उतार सकते हैं?
हाँ, ये सोचने वाली बात है, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।